कमरे में फैली खामोशी अब धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। अदिति और अक्षरा आमने सामने खड़ी थीं। दोनों की आंखों में अलग अलग इरादे, लेकिन टकराव एक ही। अचानक अक्षरा ने बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़कर अदिति के हाथ से फोन झटके से छीन लिया। अरे, अदिति चौंक गई। अक्षरा ने फोन अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसके चेहरे पर अब वो शांत मुस्कान और भी गहरी हो गई। बहुत स्मार्ट हो गई हो ना तुम, उसने धीमे लेकिन चुपते हुए लहजे में कहा। अदिति की भौहें सिकुड़ गईं। अक्षरा, मेरा फोन वापस करो। लेकिन अक्षरा जैसे सुन ही नहीं रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आई, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोली, अदिति, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि बड़े लोगों के बीच पड़ो। उसकी आवाज अब सख्त हो गई थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रही हो? अदिति ने बिना पीछे हटे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है। अक्षरा हंसी, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। सच बोलोगी? पापा को सब बता दोगी? वो और करीब झुकी। और फिर क्या चाहती हो, वो मुझे छोड़ दे? उसकी आंखों में अब हल्की बेचैनी छलकने लगी थी। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती अदिति। कुछ पल के लिए उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। तुम नहीं समझोगी, ये घर, ये नाम, ये सब कुछ। फिर उसने खुद को संभाला और फिर से सख्त हो गई। मान जाओ वरना पछतावा होगा। अदिति कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, फिर अचानक उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें ताना था। ओ प्लीज, उसने सिर हल्का सा झटकते हुए कहा, अब तुम तो मुझे ये सब मत सिखाओ। उसकी आवाज़ अब तेज और साफ थी। अदिति एक बार जो सोच लेती है उसे करके ही मानती है। वो एक कदम आगे बढ़ी। मुझे मेरा फोन अभी वापस करो, उसकी आंखों में अब साफ गुस्सा था, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षरा की पकड़ फोन पर और कस गई। ओ, उसने हल्का सा सिर टेढ़ा किया, डरा रही हो मुझे? अदिति अब खुद को रोक नहीं पाई। वो झटके से आगे बढ़ी और फोन छीनने की कोशिश की। दे दो मेरा फोन अक्षरा। लेकिन अक्षरा ने भी हाथ पीछे खींच लिया। हट जाओ अदिति। नहीं दूंगी। दोनों के बीच फोन को लेकर खींचातानी शुरू हो गई। अक्षरा छोड़ो, तुम छोड़ो। अचानक धक्का लगा, अदिति का संतुलन बिगड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और फिर से फोन पकड़ लिया। अब दोनों के हाथ एक ही फोन पर थे। कमरे में उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। ये पागलपन है, अक्षरा चिल्लाई। पागलपन नहीं, सच है, अदिति ने पलटकर कहा। अगले ही पल अदिति ने पूरी ताकत लगाकर फोन अपनी तरफ खींच लिया। अक्षरा का हाथ छूट गया। फोन अब अदिति के हाथ में था। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को घूरती रह गईं। फिर अदिति ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझी तुम? उसकी आंखों में अब सिर्फ जिद नहीं, एक जुनून था। अक्षरा ने उसे देखा और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान फैल गई। इस बार वो मुस्कान खतरनाक थी। अच्छा, उसने धीमे से कहा, तो फिर मैं भी देखती हूँ तुम कितना कर सकती हो। अदिति ने फोन कसकर पकड़ा। जो करना है कर लो। अक्षरा एक कदम पीछे हटी, फिर ठंडी आवाज में बोली, तो सुनो, उसने हर शब्द पर जोर दिया, मैं भी विश्वनाथ को बता दूंगी। अदिति की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? अक्षरा की मुस्कान और गहरी हो गई। कि श्यामली आर्यन की गर्लफ्रेंड थी। जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे, अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी पकड़ फोन पर ढीली पड़ गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसकी आवाज कांप गई। अक्षरा ने तुरंत जवाब दिया, क्यों, तुम कर सकती हो और मैं नहीं? वो धीरे धीरे उसके पास आई। सोचो अदिति, अगर ये सच विश्वनाथ को पता चला, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या होगा? कमरे की हवा जैसे जम गई। अदिति के दिमाग में एक साथ कई तस्वीरें घूम गईं। विश्वनाथ का गुस्सा, श्यामली का टूटना, पूरा घर बिखरता हुआ। नहीं, उसने धीरे से सिर हिलाया। अक्षरा ने तुरंत वार किया, हाँ बिल्कुल होगा। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन हर शब्द चुभ रहा था। तुम्हारा सच सिर्फ तुम्हें नहीं, सबको बर्बाद करेगा। अदिति की आंखों में अब गुस्सा और डर दोनों थे। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अक्षरा ने कंधे मुचकाए। जो समझना है समझ लो, फिर उसने ठंडी नजरों से कहा, बस एक बात याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो मैं वो करूंगी जिससे इस घर में कोई भी संभल नहीं पाएगा। अदिति की सांसें तेज हो गईं। उसने फोन को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहीं, सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर अदिति ने धीरे से कहा, तुम चाहे जो कर लो। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। अक्षरा की आंखों में एक चमक उभरी। ठीक है, उसने हल्का सा सिर हिलाया, तो फिर देखते हैं किसकी जिद भारी पड़ती है। दोनों एक दूसरे को घूरती रहीं। कमरे में तनाव अपने चरम पर था। एक तरफ सच, दूसरी तरफ राज, और दोनों के बीच एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें हार किसी एक की नहीं, सबकी होने वाली थी। और उसी पल रत्ना देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन उनके मन में जैसे तूफान उठ रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर्दे आधे खुले थे, बाहर से आती हवा भी जैसे भारी लग रही थी। वो पलंग के किनारे बैठी थी, दोनों हाथ कसकर आपस में पकड़े हुए। ये मैंने क्या कर दिया, उनके होठों से धीमी आवाज निकली। उनकी आंखों के सामने बार बार वही पुराना पल घूम रहा था, वो फैसला, वो झूठ, वो एक कदम जिसने आज सब कुछ हिला कर रख दिया था। उन्होंने माथा पकड़ लिया, काश उस वक्त थोड़ा दिमाग लगा लिया होता। उनकी सांसें भारी हो गईं, एक पल की जल्दबाजी और आज पूरा घर दांव पर लग गया। उनकी आंखों में नमी उतर आई, उन्हें अदिति का चेहरा याद आया, उसकी घबराहट, उसका टूटना, उनकी आवाज भर्रा गई। फिर अचानक उनका चेहरा सख्त हो गया, नहीं अब पछताने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया, आंखों में अब डर के साथ साथ चिंता और सतर्कता भी थी। अगर ये सच बाहर आ गया, उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसका अंजाम वो अच्छी तरह जानती थी। पूरा परिवार, रिश्ते, इज्जत, सब कुछ बिखर सकता था। उन्होंने गहरी सांस ली और खिड़की की तरफ देखा, अब कुछ करना पड़ेगा। उनकी आंखों में एक फैसला उभर आया, इस बार गलती सुधारनी होगी, लेकिन कैसे? यही सवाल उनके दिल को और बेचैन कर रहा था, और कमरे की खामोशी में उनकी धड़कनों की आवाज़ और तेज हो गई।